कि और सब कुछ जानते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं कि किसका है। यह बहुत बड़ा अज्ञान है। तो श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान की निधि है। जितना भी ज्ञान होता है या अनुभव होता है किसी को, सब कृष्ण से आता है। मत्त स्मृति ज्ञान मतोहनम च अनंत शक्ति। श्री कृष्ण में अतार्क्य और अनगिनत असीम शक्तियां, समस्त शक्तियों के निधान। शक्ति का अर्थ उत्पादन होता है। जैसे गाय की तीन शक्ति है, गाय से गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है और दूध निकलता है। तो इन वस्तुओं को हम गाय की शक्ति कहते हैं संस्कृत में। शक्ति का बल नहीं होता है, शक्ति का उत्पादन होता है। तो एक गाय से तीन तीन शक्तियां निकलती हैं, दूध शक्ति, मूत्र शक्ति और गोबर शक्ति। तो श्री कृष्ण ऐसे है कि इनसे अनंत अनंत शक्तियां निकलती है और वे जीव के क्यों रहते हैं, उनके वजन में साइज में ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। हमने सुना है भागवत में, आप लोग भी पढ़े होंगे, श्यमंतक मणि द्वारका में एक मणि था जिससे 85 किलो सोना रोज पैदा होता था और वह मणि अविकृत रहता था। इसके वजन में साइज में कोई कमी नहीं होती थी। जहां उसकी पूजा होती थी वहां निरंतर सोना उगलता था। तो इस तरह श्री कृष्ण एक अद्भुत व्यक्ति है जिससे अनंत अनंत वस्तुएं उत्पन्न होती रहती। उसको अनंत शक्ति कहते हैं। तीन प्रकार की शक्ति है उनकी, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। और फिर इन तीनों शक्तियों के फिर कई कई भेद होते हैं। जैसे माया शक्ति है तो माया शक्ति के तीन भेद हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों को मिला करके जो चीज बनती है तो उनके भी अनंत भेद हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी एक शक्ति है भगवान की, लेकिन पृथ्वी के भी कई भेद हैं। इसमें लाल, पीला, हरा, नीला, खट्टा, मीठा, तीता, अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की वस्तुएं निकल रही है धरती से। पानी भी निकल रहा है धरती से, जो हम लोग पी रहे हैं, तो पेट्रोल भी निकल रहा है धरती से निकल रहा है। भगवान ने सारा पेट्रोल दे दिया तारक वालों को, वही भर दिया कुआ में से। जैसे पानी निकलता रहता है ऐसे वहां तेल निकलता है। जो कुछ भी इस तरह धरती से अनंत अनंत शक्तियां निकल रही प्रत्येक साल। यही एक जमीन है, इसी जमीन में अगर आप गन्ना लगाइए तो मीठा रस खींचेगा, मिर्च लगाइए तो तीता खींचेगा, इमली लगाइए खट्टा खींचेगा। पृथ्वी में अनंत रस है, इसको अनंत शक्ति कहते। जो बहिरंगा शक्ति के द्वारा बनाए हुए पृथ्वी में इतनी विशेषता है, तो फिर भगवान तो आप प्राकृत गुण से हीन है, दिव्य गुण से युक्त है। प्राकृत गुण आप में नहीं है, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण का टच नहीं है। और अविकार और विकार से रहित, ट्रांसफॉर्मेशन से रहित। दो प्रकार के विकार है, शारीरिक विकार और मानसिक विकार। कृष्ण दोनों से शून्य। हम लोगों में जो मानसिक विकार होता है क्षण क्षण बदलता रहता है, कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है। बचपन में दूसरा विचार रहता है, बुढ़ापा में दूसरा विचार आता है। कभी आदमी सो जाता है मुर्दा की तरह, तो कभी ऑफिस में बैठ करके सदन लिखने लगता है, कभी फोन करता है, तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी अस्पताल में, कभी इधर उधर। तो शरीर की भी कई दशा होती है, बचपन से लेकर के मरने पर्यंत तक शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ पैदा करता है, क्षीण होता है, घट जाता है, मर जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अविकृत है, उनका कुछ भी बदलता नहीं। न मन में परिवर्तन होता है, न शरीर में परिवर्तन होता है, एक तरह से रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज किसी पर कृपा किए तो कल रंज हो जाएंगे, यह बात नहीं। मनुष्य का मन तो बदलता रहता है। तो श्री कृष्ण को अविकार कहते हैं और उनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का अर्थ है प्रकृति का स्वामी, इस संपूर्ण विश्व के स्वामी आप हैं, आपको प्रणाम है, और इसलिए आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म का अर्थ है जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिसने सबको पैदा किया है, उसको ब्रह्म कहते हैं, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञास। तो आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण एक काल विशेष में प्रकट होते हैं और देश विशेष में भी प्रकट होते हैं। तो इसलिए कोई कह सकता है कि काल के वश में है और देश के वश में है। तो इन दोनों संताओं का परिहार करते हुए कह रही है, कालाय काल माघाय काला वयसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्ट तत्कर्त्रे विश्व हेतरे। हे काल स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप स्वयं ही काल हैं। श्री कृष्ण काल के अधीन नहीं है, ऐसे उनका प्रादुर्भाव हुआ तो कहा जाता है कि द्वापर में भगवान प्रकट हुए, जन्म लिए। तो किस तिथि को जन्म लिए, तो कोई कहेगा कि इसके पहले वे नहीं थे। इस तिथि को जन्म लिए तो नहीं थे, और जब पृथ्वी का त्याग किए तो उसके बाद नहीं। तो इस प्रकार कृष्ण ही काल के अधीन। जैसे हम लोगों के विषय में कोई लिखता है, जन्म लिखता है, हम जन्म लेते हैं तो नहीं जानते हैं कि हम किस डेट को जन्म लिए, है ना। कोई ऐसा है जो बता सकता है कि हमको याद है जिस दिन जन्म लिया था, बाद में दूसरे लोग बताते हैं लिखे हुए तो हम याद कर लेते हैं, कहीं फॉर्म भरना होता है तो लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो इसी तरह से डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिखा जाएगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम लोग उसको नहीं लिखेंगे मरण डेट, उसके बाद दूसरे लोग लिखेंगे, है ना। ये सत्य है। तो हम जन्म और मरण के काल के अंदर हुए, जिसको काल परिच्छिन्न कहते हैं, समय के अंदर। तो हमारा जैसे शरीर समय के अंदर है, एक समय में जन्म लिया दूसरे समय में समाप्त हो गया। काल तो अनंत है, लेकिन उस अनंत काल में हमारा जो समय था वो सीमित, परिच्छिन्न कहते हैं, काल परिच्छिन्न। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस तरह से नहीं है, वो केवल एक काल विशेष में प्रकट भर होते हैं, परंतु उनका वह देह या उनका स्वरूप, उनका धाम जो कुछ भी, वो पहले से ही था, उस दिन बना नहीं और न तो वे कभी समाप्त होने वाले। इसके कारण एक ये है कि वो स्वयं ही काल है। कालाय काल नाभ है, नाभ का होता है आश्रय, काल शक्ति के वही आश्रय है, वही काल है। और काला वय साक्षी है, काल के एक एक अंग के साक्षी है। काल के अवयव कुछ होते हैं, अवयव का अर्थ होता है अंग। श्रीमद् भागवतम में काल के अंगों को बांटा गया, गिना गया है तीसरे स्कंध में 12वां अध्याय में। सबसे भारी यूनिट जो है काल का, वो है द्विपरार्ध, ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी की होल आयु, उनका जो समस्त जीवन है, वो सबसे बड़ी इकाई है काल की। और सबसे छोटी इकाई है लव, लव के बाद पल, पल के बाद त्रुटि। जो हम लोग नापते हैं काल के इकाई को, तो आजकल सबसे फाइनेस्ट इकाई सेकंड है ना, सेकंड से कम गिनती नहीं है उसे कोई कम गिनती रखे है? नहीं रखे है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट काल का है सेकंड। लेकिन हमारा जो वैदिक गणना है वो शायद बहुत बार कहीं लिखे हैं और जगह, कई सेकंड का एक लॉ होता है, कई लॉ, हाँ कई लॉ का एक सेकंड होता है, ऐसा विभाजन किया गया। इतना फाइन विज्ञान, वैदिक विज्ञान नापा गया। तो छोटा से छोटा अवयव और बड़ा से बड़ा अवयव सबके कृष्ण साक्षी है। इसका अर्थ है कि छोटे समय में भी जो जो घटना हुई है कहीं भी, और जो जो घटना होगी अनंत काल तक, एक एक सेकंड तक और दुपरार्ध तक, या वर्ष में, पक्ष में, महीना में, आयन में, छह महीने का एक आयन होता है, इसमें जो भी घटना घट चुकी है, जो भी घटेगी, उस सबके कृष्ण साक्षी है, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। यह है उनका प्रभाव, यह है ज्ञान भगवान का। अरे बाप रे बाप, मनुष्य से पूछा जाए तो वर्ष भी नहीं बताएगा कि इस वर्ष में घटना हुई थी, फिर सेकेंड और मिनट बताने में तो नानी मर जाएगी क्या बता सकता है कोई है ऐसा मेधा वाला? कुछ भी बता सकता है? नहीं बता सकता। जी करके जीवन में जिस जो उसने देखा है रियली, सेकंड में देखा है, वर्ष में देखा है, महीना में देखा है, लेकिन आप नहीं बता सकते। और ये भी देखा है, थोड़ा देखा है, सबके कर्मों को थोड़े देख रहा है। बहुत बहुत जीव हैं, एक एक मच्छर के मन में क्या है, चूहा के मन में क्या है, वृक्ष क्या सोच रहा है, और किस सेकंड पर क्या सोचा, कब मरा, कब गिरा, कब जिएगा, कब खाएगा, कब चलेगा, कब पलक गिरेगा, सबको कृष्ण जानते हैं। इसलिए गीता में कहते हैं कि वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। कृष्ण कहते हैं अहम वेदा, वेदा हम, मैं जानता हूँ क्या, समतीतानि अतीतानि, अतीत काल में भूत काल में जो कुछ भी हो गया है मैं सब कुछ जानता हूँ, वर्तमानानि और वर्तमान काल जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, हे अर्जुन वर्तमान में जो कुछ हो रहा है सब मैं जानता हूँ। एक एक प्राणी के हृदय में क्या विचार उठ रहा है वो भी जानता हूँ, किसको क्या भोजन देना है, लेना है, करना है, मरण जीवन सब मैं जानता हूँ। भविष्यवाणी च भूतानी, और भविष्य में कौन क्या क्या कैसे होंगे, क्या नाटक करेंगे, सब मैं जानता हूँ। लेकिन मान तो वेदन कश्चन, मैं अकेले सबको जानता हूँ, सब मिलकर मुझको नहीं जानते हैं। है ना, आज देखिए भगवान तो सब जानते हैं लेकिन भगवान को कोई नहीं जानते है। कहते निराकार, नहीं जानने के कारण ही कहते हैं कि निराकार, अपने अज्ञान का अनुवाद कर देते हैं, नहीं जानते। ये नहीं कहते हैं कि नहीं जानते हैं, ये कहते हैं वो निराकार। ये बहुत बड़ी गलती। भगवान स्वयं कहें मान तू वेद न कश्चन, कश्चन अति मान न वेद, मैं सब कुछ जानता हूँ मुझको कोई नहीं जानता। भगवान एक प्रकार से शोक प्रकट कर रहे हैं कि मान तो देख रहे कश्चन मुझको कोई नहीं जानता, देवता भी नहीं जानते हैं, दैत्य भी नहीं जानते, फिर मनुष्य की क्या दिशा है। नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को देवता तक नहीं जानते हैं, दानव भी नहीं जानते हैं, फिर मनुष्य क्या जानेंगे। मनुष्य सबसे छोटे स्तर के प्राणी हैं, सबसे हीन है वास्तव। इनकी अपेक्षा दैत्य बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और भगवान को जानते हैं। मैं पहले कहा भले उनका भगवान से झगड़ा है लेकिन वो जानते हैं, लेकिन मनुष्य तो जानता ही नहीं है कि भगवान क्या चीज है। ये सेक्ट हो, धर्म, ये पंथ हो, पंथ निराकारवाद शासन कर रहा है संसार में, जानते ही नहीं। जब भी आप शास्त्र में प्रवचन देखेंगे तो कहा गया है कि देवता और दानव भी नहीं जानते हैं, फिर मनुष्य क्या जानेगा। मनुष्य बहुत हीन प्राणी है। देवता लोग आपस में जब मीटिंग करते हैं स्वर्ग में, कभी कभी मनुष्यों पर बहुत शोक प्रकट करते हैं, कितने ये कंडम जीव है, बहुत तरस खाते हैं वो लोग। कभी कभी वो लोग चाहते हैं कि हम भी मनुष्य हो जाते, भक्ति करते, लेकिन वो यह इच्छा उनके भीतर उदित होती है जो बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं। उसे कहें कि हम इस मैनेजमेंट में पड़े हुए हैं, संसार को देखने में, संसार को चलाने में, हम भी बल्कि इस मैनेजमेंट से बाहर जाकर के, छोड़ करके जाकर के भारत भूमि में जन्म लेते और भगवान का भजन करते हैं। देवता आदि भी अमेरिका आदि में जन्म लेने के लिए नहीं तरसते, वर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते, लेकिन वो बड़े बड़े भक्त होते हैं, भक्ति की लालसा से ऐसा चाहते हैं कि जो कुछ भी हो। देवता लोग बहुत हीन समझते हैं मनुष्य को, इस पृथ्वी पर आते हैं तो पैर नहीं देते हैं, इस पृथ्वी पर ऊपर रहते हैं, इतना उनके दृष्टि से पृथ्वी अशुद्ध लगती है, इस पर पैर नहीं देते, आकाश में चलते हैं। ये देवताओं का स्टैंडर्ड है। तो भगवान श्री कृष्ण सबके गतिविधि को जानते हैं, एक व्यक्ति सबके आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है सबकी इच्छा को जान रहा है, अनादि काल से अनंत काल तक सब याद है उनको। ऐसा एक बार मैं इस बात को कहा तो भक्त कहा रही बात हुआ भगवान का दिमाग फट जाएगा ऐसे दिमाग फट जाएगा इतनी बात कैसे याद रखते तो अपने समाज समझ रहा था। भारत वर्ष का एक लड़का था ऐसे कहा इतनी बात भगवान याद रखते हैं अनादि काल से अनंत काल तक सब कुछ। सब परिषद में कहा गया एको बहु नाम जो विदधाति काम, एको एक व्यक्ति बहु नाम बहुत लोगों के कामन विदधाति उनके भोगों को जुटा रहा है दे रहा है खाने, शरीर भी बनाया और शरीर से भोगे जाने वाली वस्तु भी वही बनाया। हम लोग तो शरीर भी नहीं बनाए हैं और जो खा पी रहे वो भी हम नहीं बनाए हैं, है कि नहीं? शरीर हम अपने से नहीं गए हैं यहां तक कि माता पिता भी शरीर बनाए नहीं है जल्दी, वो तो माँ के उदर में शरीर बनने लगता, भगवान की ऐसी शक्ति है कि वो शरीर बनता है, कोई जान बुझकर थोड़ी बनाती है, बनने लगता है शरीर। और बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या खाएगा पहनेगा वो भी भगवान बनाना चालू कर देते हैं, शुरू में उसके दांत नहीं होते हैं तो माता के शरीर में ही वे उसके लिए बहुत सुंदर पेय दूध की व्यवस्था कर देते हैं, उसमें भात रोटी खा नहीं सकता है, इसलिए दो दो दूध की थैली भगवान देते हैं। देखिए नेचुरल व्यवस्था है, और इसके बाद जब बड़ा हो जाता है तब तब कोका कोला पीना चालू करते हैं तब तो दूसरी बात हो गई, जो भी हो वो भी सब भगवान दे रहे हैं, वो भी पानी आदि जो है सब भगवान दे रहे हैं, उसको भले बिगाड़ करके आदमी पीए लेकिन भगवान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं शुद्ध ढंग से पियो, जल भी मुझे अर्पण करो, लेकिन अर्पण करना नहीं चाहते, बोतलों में बंद पानी पीता रहता है ये आदत हो गई है। आपने सुना भगवान श्री कृष्ण जाकर झरनों का नदियों का पानी पीते थे साफ सुथरा, अब तो पानी भी बिकने लगा है, तेल के भाव बिकने लगा है ज्यादा महंगा, भारतवर्ष में पानी महंगा है डीजल की अपेक्षा, एक लीटर पानी 12 रुपए में 10 रुपए में मिलता है और डीजल 7-8 रुपए में। हाँ ये देखिए तमाशा 1400 रुपए एक लीटर, 2 लीटर तेल मिल जाए, प्रकट यहाँ गया। तो भगवान सब व्यवस्था कर रहे हो, पानी हो हवा हो पृथ्वी हो कुछ भी हो, एको बहु नाम विधाति काम, एक व्यक्ति सबको पोस रहा है। आज भी हम लोग देखते हैं, भारतवर्ष की बात मैं कह रहा हूं, यहां भी हो सकता है सत्य हो, कि दो माता पिता 8-10 बच्चे को पोस देते हैं लेकिन 8-10 लड़के मिलकर दो माता पिता को नहीं पोस पाते, ये सही है ना ये देखिएगा ये बात, और वे पोस पाल दिए, पढ़ा लिखा दिए, सब कुछ कर दिए, समर्थ, लेकिन उन दो को पोसने में 8 आदमी समर्थ नहीं है, देखा गया। तो भगवान अकेले सबको पोस रहे हैं, जो जो जीवन में आवश्यक वस्तु है भगवान बहुत मात्रा में बनाए हैं, जैसे पानी, पानी की आवश्यकता है तो पानी बहुत सुलभ किया, उससे ज्यादा जरूरी हवा है तो हवा तो सब जगह बना दी, जो चीज जरूरी नहीं है उसको बहुत कम बनाए एक बार की सत्य घटना सुना रहा हूं, दिल्ली में रथ यात्रा निकली हुई थी, हम लोग रथ यात्रा में चल रहे थे तो दिल्ली में एक पुराना मार्केट है उसमें आगे आगे हम लोग चल रहे थे, रथ यात्रा में चलते चलते थक गए थे इसलिए आगे आगे जाने लगे और जगह लोग आरती कर रहे थे, देर कर रहे थे तो हम लोग आगे चले गए, तो देखिए दोनों साइड में ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थी, बहुत भारी भारी दुकानें। तो हमने कहा, हमारा एक मित्र चल रहा था साथ में, तो मैं कहा कि देखो भगवान कितना फल बनाया है, इतना अच्छा अच्छा फल बनाए हैं, कितना ज्यादा ज्यादा स्टॉक रखे हैं लोग, तो वो कहता है अरे तो कुछ भी नहीं है, तो माल गोदाम में इससे ज्यादा रखे हैं, दुकान में तो कम है, बहुत फल है ऐसा ऐसा। तो मैं ये कह दिया कि बहुत भगवान फल बनाए हैं, ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं बहुत नहीं है, सब आदमी को थोड़ा थोड़ा बांटा जाए तो ये बहुत नहीं है, भगवान बहुत कम बनाए हैं। वो कह दिया कि भगवान मनुष्यों की तुलना में ड्राई फ्रूट्स बहुत कम बनाए। तो मेरे मुख से निकल गया कि इसलिए कि उसकी बहुत जरूरत नहीं है, इसलिए कम बनाए। तो इस पर वो चिढ़ गया, कहा कि जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा अच्छा मेवा है, इसकी जरूरत क्यों नहीं, आपसे क्यों कह रहे जरूरत नहीं है। तो मैं कहा नहीं जरूरत होती तो भगवान बनाते, जितनी जरूरत है उतनी बनाए, इसकी बहुत जरूरत नहीं है। तो कहा जरूरत क्यों नहीं है, इसको खा करके आदमी स्वस्थ होता है, होता है, होता है, होता है। तो कभी बैल गाड़ी आ रही थी, खूब स्वस्थ बैल उसमें लगे हुए थे दो बैल। तो मैं कहा कि काजू किशमिश खाने से आदमी स्वस्थ होता है, तो कहा क्यों नहीं। मैं कहा ये बैल कितने काजू किशमिश खा रहे हैं बताओ, ये काजू किशमिश खा करके गाड़ी खींच रहे हैं, ये फालतू चीज है काजू किशमिश। आस्ते आदमी चाहे तो साधारण भोजन करके बहुत स्वस्थ रहेगा। हमने देखा है अफ्रीका में कि अफ्रीकन लोग, काले काले लोग बहुत सिंपल भोजन करते हैं, मकई का भात खाते हैं, क्या क्या केवल नमक डाल करके, और भारतीयों से ज्यादा स्वस्थ। कहीं कहीं तो हम देखें भारतीय और उनमें इतना अंतर, अगर वो ट्रैक्टर है तो ये मारुति कार है, एक धक्का में खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं, इतना अंतर आपने देखा है ना। और भारतीय लोग मसाला खाते खाते अपने आंख तोड़ देते हैं, बहुत मसाला खाते तो जो कुछ हुआ, भगवान ने उन वस्तुओं को बहुत बनाए हैं जिनकी बहुत जरूरत है, और जिसकी जरूरत कम है उसको कम बनाए हैं। ऐसे देखा जा सकता है, लेकिन मनुष्य उन वस्तुओं को खाता है तो नेचुरल रूप में नहीं खाता है, कुछ न कुछ बिगाड़ करके खा रहा है। एक सन्यासी के भक्त वर्ष में कहते थे शराब का अर्थ है सड़ा हुआ आब, अब मन पानी उन पानी को सड़ा करके पीते हैं जो शराब को आखिर पी रहे लेकिन उसको सड़ा करके उधर उधर करके खाते। बस पता नहीं कई दिन का पानी किधर का कौन पैक किया, कैसे रखा हुआ है, विश्वास करके पी लेते हैं। शराब पीने वाले खूब अपना पक्ष उन्नत करते हैं, वे कहते हैं एक बार में एक व्यक्ति को कहा शराब नहीं पीना चाहिए, एक मेरी शिष्या थी, शिष्या है तो उसके पति शराब पीते हैं अभी भी पीते हैं। तो हमसे बताए कि महाराज उनको समझा दीजिए वो शराब छोड़। तो मैं गया उनके पास तो अलमारी से शराब निकाल करके वो कहते हैं स्वामी जी आप जो आए हैं हमारा शराब छुड़ाने के लिए, तो मैं शराब नहीं पीता हूं। नहीं वो कहे कि हाँ मैं शराब पीता हूं, शराब मैं पीता हूं, शराब मुझको नहीं पीती है वो लगे हमको उल्टे समझाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शराब पीती है, वे शराब नहीं पीते हैं उन्हें कहने का आशय था कि कुछ लोग शराब के बस में हो जाते हैं, और मैं बस में नहीं हूं, मैं पीता हूं शराब को, शराब मुझको नहीं पीती है। यदि 10 दिन मुझे इच्छा नहीं करेगी मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन उनको जाकर के समझाइए जिनको शराब पी रही है। और एक शायद गाय शायद सुनाए, वो कहे कौन कहता है कि शराब में नशा है, कौन कहता है शराब में, कौन कहता है नशा है? अगर शराब में नशा होता तो ये बोतलें भी उछड़ती उछड़ती, इनमें नशा आ जाता है कि नहीं आदमी में नशा होता है शराब में नहीं, तो शराब में नशा होता तो जिन बोतलों में शराब हो बोतल उछलती जिन की गाली देती है कि नहीं। इस तरह से लोग फर्क देते हैं, थर्ड क्लास की बात बोलते रहते। शराब में नशा नहीं है, पीने वाले की बदमाशी। वो कह रहा था इतना हिसाब से पियो, वो कह रहा था कि इतना हिसाब से पियो कि शराब तुमको नुकसान नहीं करना पाएगी। वो छोड़ा नहीं, जो कहते इस तरह से जो कुछ भी हो भगवान समस्त काल के अंगों के साक्षी हैं। एक एक सेकंड के, पल के, लव के, संवत्सर के या कल्प के, महाकल्प के, विपरार्ध के, जो भी घटनाएं हुई हैं होंगी, वो सब कुछ जानते हैं और इसके दृष्टा हैं। इतनी उन कालों में प्रकट हुए हैं, सब किए हैं, लेकिन फंसे नहीं है। हम लोग तो फंस जाते हैं जिस काल में कोई काम करते हैं, तो मेरा है, ये है, वो है, वो है। साक्षी मात्र नहीं रहते हैं बल्कि दृश्य हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। भगवान फंसते नहीं। कितनी बार सृष्टि किए, कितना बार प्रलय किए, लेकिन उनको कोई गम नहीं है, कोई दुख है न गर्व है कि मैं बहुत सफल व्यक्ति। तो वही विश्व स्वरूप है, विश्व के द्रष्टा है, विश्व के कर्ता है, विश्व के कारण है। विश्वाया तद उपद्रष्टे तत्कर्तृ विश्व है कर। विश्व स्वरूप है मैंने उन्हीं की शक्ति विश्व के रूप में परिणत हुई है, और विश्व के द्रष्टा है, विश्व के कर्ता है, और विश्व के हेतु है, कारण। सब कुछ उन्होंने पैदा किया, सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। इस प्रकार से एक एक श्लोक बहुत विचारणीय है। फिलोसफिकल जी एक शब्द ही काफी है एक दिन की कथा के लिए, समझने के लिए। वास्तव में तो कभी कभी एक एक श्लोक लिया हूँ एक सिटिंग में, और भक्त लोग कहा कहिए इसी को कहिए इसी को कहिए, ऐसा कहते हैं। और हमें भी आनंद आता है भगवान के गुणों का स्मरण करने में, क्योंकि आगे भी बढ़ेगा तो वही गुण है। फिर उसी बात को कह रहे हैं, भूत मातेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिया से आत्मने पंच महाभूत के और शब्द रूप रस आदि मात्राओं के, इंद्रियों के, प्राण के, मन बुद्धि और आशय के आप ही चेतनता है, आत्मा है। तो चेतना देते हैं, जैसे पंच महाभूत के जड़ शरीर है, इसके भीतर भगवान चेतना देते हैं, काम करने की शक्ति देते हैं, अन्यथा यह जड़ है। तो इसी प्रकार से रूप रस गंध आदि जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन बुद्धि और अंतःकरण सब जड़ है, इनमें एक मैटर है, लेकिन भगवान इनमें चेतना देते हैं, इसलिए इन सब का आत्मा कहते हैं उनको। आत्मा माने ज्ञान प्रदाता, ज्ञान देने वाला। तीन गुणे में अभिमान में गुढ़ स्वात्मा भूत है, तीन गुणों के अभिमान द्वारा त्रिगुण कहते हैं शरीर को। शरीर में अभिमान द्वारा मैं यह शरीर हूँ इस भावना द्वारा जीवों के ज्ञान को जो ढक दिए हैं, जिनकी माया शक्ति ने जीव के ज्ञान को आवृत कर लिया है, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं। गुढ़ स्वात्मानुभूत है, गुढ़ा छन्ना स्वांश भूतानाम आत्मनाम जीवानाम अनुभूति ज्ञानम चल तस्मी। वास्तव में जीव कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति है कि जीव का यह ज्ञान, जीव की यह कृष्ण भावना छन्न दिखाई नहीं पड़ रही। जीव का संसार में अनुराग हो गया, राग हो गया है, भगवान से प्रेम नहीं। इसको गुढ़ स्वात्मानुभूति कहते हैं। आत्मानुभूति का अर्थ अपना अनुभव, और अपना अनुभव का मतलब है कृष्ण से प्रेम करना। लेकिन जीव का, अनंत कोटि जीवों का कृष्ण प्रेम ढक गया है भगवान की माया शक्ति द्वारा, आवृत है। इसको नया प्राप्त नहीं करना है, केवल आवरण हटाना है। आवरण हट जाएगा बस ठीक हो जाएगा। आवरण कैसे हटेगा? सुनने से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी न श्रवण आदि सिद्ध चित्त कराएगा। तो भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि अनंत कोटि जीवों के ज्ञान को ढक दिया। सहज हम समझ सकते हैं, जैसे रात्रि में हम लोग सो जाते हैं तो निद्रा भी भगवान की एक शक्ति है। या देवी सर्वभूतों से निद्रा रूपेण तिष्ठ वर्तते। निद्रा भगवान की एक शक्ति है जो सभी जीवों को सुलाता है। जब हम सो जाते हैं तो इसमें दिन में हमारी जो योग्यता होती है लिखने पढ़ने काम करने को सब आदृत रहते हैं। जब तक निद्रा से हम आहत रहते हैं तब तक हमारा गुण प्रकट नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह से हम लोग अज्ञान में सोए हुए जीव जागुआ गोरा चांद पाला। तो भगवान की माया शक्ति ने जीवों के ज्ञान को ढक दिया। जिनके माया की ऐसी महिमा है ऐसे प्रभु को हम नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अगला आधा घंटा है प्रश्न के लिए समय दिया है। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। ये तो बहुत लंबी स्थिति है। ठीक है, भगवान की शक्ति है माया, दैवी है सगुण नहीं मम माया विरक्त है। लेकिन भगवान ने इसके साथ ही साथ जीव में बहुत शक्ति दिए हैं। वह भगवान का स्मरण कर शरण ले तो इस शक्ति को परास्त कर सकता है। जीव तो परा प्रकृति है, माया से बलवान है, लेकिन अपने स्वरूप में आए भगवान का भजन करे तो परास्त कर सकता है। भगवान ने उपाय बताया है, बारंबार भगवान कहते हैं इस तरह से माया को डिफीट करो। पर मानिए ये प्रपद्वंद माया में कम करण जीते हैं, जो मेरी शरण लेते हैं उस माया को तर जाते। तो जब जीव यहां महसूस कर रहा है कि माया बहुत प्रचंड शक्ति है, हमको बस में रखी है, तो इससे पार पाने के उपाय तो उसे करना चाहिए और उपाय भगवान बता रहे हैं। लेकिन वह उपाय न करके दूसरा उपाय करता है। भगवान कहते हैं मेरा भजन करो तो कहता है कि निराकार है भगवान, तो माया क्यों नहीं मारेगी उसे। माया भी भगवान की इच्छा के अनुसार जीवों को सताती है, स्वतंत्र नहीं है माया। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको दंड देना जरूरी है, तो माया इस तरह दंड देती है भगवान की इच्छा से। जो कुछ हो रहा है वास्तव में जीव के कर्मानुसार हो रहा है, लेकिन माया शक्ति जो जीवों को जन्म मृत्यु देती है, स्वर्ग नरक में गिराती है, सब कुछ भगवान की इच्छा से देती है। भगवान चाहते हैं कि इसको मार्ग को शुद्ध किया जाए। लेकिन जीव ऐसा अज्ञानी है कि चाहे नरक में पटको चाहे कहीं भी यही सुख मांग लेता है। जन्म मृत्यु में ये टेस्ट नहीं है, उसको टेस्ट नहीं है। नहीं, टेस्ट रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जीव को टेस्ट नहीं है, नहीं तो भगवान का टेस्ट पा करके फिर इतने नरक में सूकर कूकर बन करके कैसे इसमें रहेगा। टेस्ट अब देना है उसको, अब देना चाहिए। है भगवान की शक्ति है और माया का अर्थ होता है जो नहीं है। माया ना मैंने नहीं या मैंने जो जो वास्तव में नहीं है। जैसे मान लीजिए ये शरीर है मनुष्यों का, इसको आदमी कहता है सुंदर है, ये है वो है, लेकिन इसे प्लास्टिक जैसे कवर को यदि हटा दिया जाए तो इस शरीर में क्या सुंदर है। ये मांस सुंदर वस्तु है, इस शरीर में थोड़ा लीक हो जाता है तो हजारों मक्खियां आकर के भनभनाने लगती है ना। और शरीर में पंखुल जाता घाव हो जाता है, शरीर सड़ करके तीव हो जाता है। तो मांस तो कोई सुंदर वस्तु नहीं है। अगर उसके नीचे हड्डी है, तांत है, रक्त वाहिनी नलियां है, मल मूत्र है, मज्जा है, केस है, नख है, इसमें कुछ भी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य का ज्ञान इतना टाइट है कि इसी को कहता है सुंदर है। ये इतना स्टूडियो है, फोटोग्राफी है, सब इसका फोटो खींचो, रखो, ये करो, वो करो। और एक दिन आग में जलता हुआ भी फोटो लेता है। आजकल के तो लोग ये भी करते हैं, आग में जल रहे हैं तो लेते हैं, विवाह के अवसर पर भी फोटो लेते हैं, और जब वो आग में शरीर जलता है उस समय पर भी लेते हैं। हमने जीवन में देखा था, सबसे पहले टीवी देखा जीवन में प्रथम बार श्रीमती इंदिरा गांधी को जलते हुए दिल्ली शांति वन में, शरीर जल रहा था, जला रहा था, राजीव गांधी जला रहा था। तो शरीर तो जल जाता है, शरीर में वास्तव में कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन मनुष्य मान लेता है ज्ञान, बस क्या कहा जाए, कोई चीज सुंदर नहीं। मान लीजिए शरीर के चमड़े को हटा करके एक टोकरी में रख दिया है, मांस को खखोर करके एक बाकेट में रख दिया है, रक्त को बटोर करके एक जगह शीशी में रख दिया है, मल मूत्र को थैले में रख दिया है, कहा गया इसमें से देख लो कौन सुंदर वस्तु, छूने क्या देखने लायक तक वस्तु नहीं रहती, देखने के बाद आदमी फोटो करेगा, लेकिन इसी को ब्रह्मा जी ने सजा करके प्लास्टिक से मह दिया है तो कहता ओ कितना सुंदर है। यही है माया भगवान की, श्री कृष्ण की माया शक्ति दैवी है, सब गुण में माया जो रखते।
आपने बताया कि
नहीं, और जो जीव की भौतिक आवश्यकताएं हैं, नैचुरल है, वो सब पूर्व निश्चित है, लेकिन भगवान की भक्ति करना यह कर्म नहीं है। कर्म में और भक्ति में अंतर है, अकर्म है, तो कर्म के अनुसार अब सब कुछ लिखा जाता है, लेकिन भक्ति कर्म नहीं है, कर्म का फल नहीं, इसलिए लिखी हुई नहीं, इसे करना पड़ता है। तस्य हेतु प्रजपेत कोविद न लब्धते जब धनता में प्रजन। महाराज जी कहते हैं कि उसी वस्तु के लिए विद्वान व्यक्ति को यत्न करना चाहिए जो ऊपर या नीचे लोगों में भ्रमण करते हुए कर्मानुसार नहीं मिलती है। भक्ति के लिए यत्न करना पड़ता है, इसके लिए यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सुनिए कि एक दिन बैठे रहेंगे माला आकर हमारे हाथ में उड़ करके जप होने लगेगा, फिर या हम भक्त हो जाएंगे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन बीत रहा है एक एक दिन एक एक दिन, और जो कुछ है सब मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा, जो भाग्य में लिखा कर्म में कपड़ा मिलेगा, भोजन मिलेगा, घर मिलेगा, सांसारिक स्थिति जो कुछ भी है सब कुछ होगा। भक्ति जीव का धर्म है, उसे करना पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग रह रहे हैं प्राकृतिक जगत में, और प्राकृतिक जगत स्वरूप शक्ति का विरोधी शक्ति है, माया शक्ति है, तो हम लोग निर्णय करते हैं, लेकिन निर्णय कोई, इसलिए प्राकृतिक जगत निर्णय बदलता जाता है, धूल हो जाता है, हट जाता है, इसलिए बारंबार निर्णय करना चाहिए, बारंबार इस पर कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोगों के भी विचार क्षण क्षण में बदल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऐसे सुना जा रहा है, तपस्या करने चले जितेंद्रियों के रास्ते में, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लेकिन माया का ऐसा प्रभाव है कुछ बातों में आकर क्रोध हो जाए तो तप वृथा हो जाता था, या काम की चपेट में आ गए, किसी अप्सरा के मोह में पड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये संसार है, स्वाभाविक है यहाँ ये होना, इसीलिए यहाँ कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं परफेक्ट हो गया, सिद्ध हो गया, अब खाऊं पीऊं कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा जा सकता है। माया किसी भी पॉइंट पर पकड़ सकती है ना, माया तो ऐसी प्रचंड है कि दस दस पंद्रह पंद्रह दस त्रिदंड ढोवा करके फिर उजला पहना देती है। है कि नहीं? माया ऐसी प्रचंड है। और वो क्यों ऐसा होता है? जब हम मान लेते हैं कि बस बस माया परफेक्ट हो गया, पूर्ण हो गया, अब हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें मंगलारती से मतलब नहीं है, जॉब से भी मतलब नहीं, केवल टाइम से खा लेना है, सो लेना है, क्योंकि मैं सिद्ध हो गया, तब तो माया तो सिद्धाई खोल ही देगी। किसी भी पॉइंट पर नहीं मानना चाहिए कि मैं कृतार्थ हो गया, मैं युद्ध कर रहा हूं और अभी विजयी नहीं हुआ हूं, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। ऐसा सुनो कहूंगा तो कितना कठिन होगा। हाँ, जी जी आए नहीं, भगवान ने की इच्छा को जब हमारे भीतर इच्छा होगी तो भगवान उस तरह की व्यवस्था करते हैं, सबके हृदय में ही है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए इच्छा नहीं करेंगे। इच्छा करना हमारा स्वरूप है। इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद मोहन भारत, और इच्छा के कारण ही तो हम इस तरह इस दशा में हैं। इच्छा की पूर्ति होना न होना भगवान के हाथ में है, लेकिन इच्छा करना हमारा अधिकार है, हम इच्छा करेंगे। तो इच्छा होने के बाद भी भक्ति में विकास के लिए वास्तव में साधु संग सबसे आवश्यक है। भगवत कृपा से भक्ति पैदा नहीं होती है, भक्ति उत्पन्न होती है भगवान के भक्त की कृपा से, साधु की कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है। आप देखिए संसार में सब जगह उदाहरण है। और अमेरिका में श्री प्रभुपाद जी आए तो उसके पहले ही कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में थे ही, है कि नहीं? कृष्ण सबके हृदय में थे पहले से, लेकिन कोई भक्ति उत्पन्न नहीं। लेकिन जब एक साधु की कृपा हुई, प्रभुपाद जी के मन में बात हुई कि ये लोग भक्त हो जाए, हो जाए तो हो गए। नारद जी की कृपा से बहुत लोग भक्त बने, प्रहलाद महाराज की कृपा से भक्त बने, तो बहुत ऐसे साधु जन हैं जिनकी कृपा से भक्त हो गए। इसका कारण यह है कि भक्ति जिसमें है वही भक्ति दे सकता है। तो भगवान की भक्ति भगवान में तो है नहीं, वो क्या देंगे? समझ रहे हैं? भगवान के प्रति भक्ति तो भक्तों के हृदय में रहती है, इसलिए भक्त भक्ति देने में समर्थ होते हैं, वही दे सकते हैं, भगवान नहीं दे सकते, उनके पास है ही नहीं। हाँ, ये बात है, राइट। भगवान की कृपा से साधु की प्राप्ति होती है निश्चित, और साधु की जब कृपा मिलती है तो भगवान मिलते हैं, भक्ति मिलती है। ये प्रोसेस है, यही विधि है। भगवान कृष्ण की कृपा से साधु की प्राप्ति होती है, जरूर बात है। तो भगवान उस व्यक्ति के किसी शुभ आचरण से प्रसन्न होते हैं, तो ऐसा संजोग देते हैं कि उसे साधु से भेंट होती है। वास्तव में जो कुछ भी है सब भगवान के हाथ में है। अब प्रभुपाद जी के हृदय में भगवान बैठ करके लाए अमेरिका में, और भाग्यशाली भाग्यवान जीवों को मिलाए प्रभुपाद जी से। कृष्ण तो मुख्य है, इसमें तो संदेह नहीं, उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उनमें ऐसी नहीं कि उनकी कृपा कभी कभी होती है, उनमें कृपा यदि है सबके प्रति समान रूप से, और उसे प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए भक्ति कुछ करेंगे तब उनकी कृपा प्राप्त होगी। जी, भक्ति करने से नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाम जप करने से भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो अपना प्रेम बढ़ाने के लिए और साधु संग देंगे और व्यवस्था करते हैं। लेकिन इसको करना चाहिए, नामोच्चारण सबसे बड़ी भक्ति है किसी भी दशा में। लेकिन मैं बताया ना कि वो भक्त की पत्नियां थी, कल एक भक्त था वास्तव में, गरुड़ जी का अपराध किया था, इसलिए उसने आकस्मिक संसार का राज आ गया था। लेकिन वे लोग तो पतिव्रता थी और किसी न किसी जन्म में उन्होंने भक्ति किया था। नाग कन्या गांड उसमें नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, भक्ति तो जहां रखाइल गोविंद चरण, भक्ति से उन्होंने गोविंद का चरण पाया, तो भक्ति किया था। अब लिखा नहीं गया कब किया कहां गया, लेकिन किया था, इसलिए कृष्ण को समझ गए थे, जान गई थी। क्या सुपर सोल? वो तो सुपर सोल ही प्लान करता है कि कब इस सोल को निकालना है। आप जानते हैं जो सुपर सोल है वही सारी व्यवस्था करता है, कब तक इसको रहना है शरीर में, शरीर को कब मार देना है, कब ऑक्सीजन करना है, सब उनको मालूम है। और सुपर सोल के जीव के कर्मानुसार सुपर सोल सारी व्यवस्था करता है। मत्ता स्मृति ज्ञान में पहुंचना तो कोई ड्राइविंग कर रहा है, जब उनको निकालना है सोल को वहां से, तो ड्राइवर के मन में भ्रम पैदा कर दे, ठास लगेगा, जाओ शरीर से विदा हो जाए, परमात्मा उसके बाद जाते हैं। ऐसा है कुछ है, कुछ परसेंट जो कर्म को बदल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए जन्म के समय से ही कोई व्यक्ति काला है, जैसे मान लीजिए अफ्रीकन है, तो वो अगर ये सोचे कि मैं इस जीवन में गोरा हो जाऊं, ये तो नहीं होगा। वो चाहे कोई कर्म करे, रोज 10-10 साबुन लगाओ, लेकिन वो तो अभियान वाला नहीं जो कुछ भी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बदली जाती है, और बदलने के लिए ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आंधी आने वाली है, अभी पता चल जाता है, प्रेडिक्शन होता है कि आंधी आएगी, वो तूफान आएगा, तो उसके पहले आदमी कुछ सजग हो जाता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आदमी घर छा लेता है, ढंग से रहता है, कर लेता है, कुछ उपाय करता है, तो उसके आवेग से बच जाता है। यदि प्रभाव तो पड़ता है, वर्षा होती है और होता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। या जैसे हम लोग प्लेन से चलते हैं, तो ये घटना तो कभी हुई होगी चाहे होती रहती होगी, इसीलिए कहते हैं कि वो सुरक्षा के कागज को पढ़िए, इमरजेंसी में क्या क्या करना है। तो मान लीजिए तो होता नहीं है प्राय, लेकिन होने वाला हो तब भी उससे बचने के लिए कुछ उपाय किया जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन लेकर के नेक से खींचो, या आपकी सीट के नीचे फ्लोटिंग तैरने वाली वस्तु उसको लेकर के तैरिए, यदि जल में उतरे तो ये करे तो वो करे, तो जो होने वाली घटना में फिर भी उससे बचने के लिए कुछ उपाय किया जाता है। तो इसी तरह से कुछ बातें होने वाली हैं, फिर भी उसके कुछ काउंटर कर्म है जिनसे बचा जाता है, तो वो तो करना चाहिए मनुष्य को। लेकिन समस्त कर्मों को भस्मीभूत करने के लिए कर्मार निर्दहत किंतु च भक्ति भाजा, भगवान की भक्ति करने से ये कर्म भी शांत हो जाते हैं, तो नहीं भोगना पड़ता है। भोगना ही पड़ता है तो उस तरह से, जैसे मान लीजिए गर्दन कटने का दंड हो लेकिन उंगली थोड़ा काट करके छोड़ दिया गया, तो इस तरह का फल भोगना पड़ता है। कर्म करने के लिए हमेशा कहा गया, ये नहीं कहा गया कि जो होने वाला होगा इसीलिए तुम जाओ सो। भगवान अर्जुन को ऐसा नहीं कहते हैं, तुमको कर्म करना है करना है, लेकिन होने वाला तो होगा ही, फिर भी हमें कर्म करना है, उसे बचने का उपाय करना है। अब जाड़ा आने वाला है, मान लीजिए तो जाड़ा आने वाला है, तो अब रोड पर खड़ा होकर के मर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जाड़ा आने वाला है तो स्वेटर पहनेंगे, हीटर जलाएंगे, उपाय तो करेंगे, फिर जाड़ा चला जाएगा। तो इस तरह से उपाय है, करना चाहिए, जैसे यज्ञ दान तप भगवान की भक्ति शुभ कर्म का आचरण, इससे पहले के कर्मों में कुछ कमी आती है बंधन में, धीरे 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 अभी मुक्त हो जाता है। उपाय बताया गया है नहीं करेंगे। भक्ति इतनी प्रबल वस्तु है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भया, थोड़ी भी भक्ति करने पर समस्त कर्म नलिफाई कर दिए जाते हैं। भक्ति बहुत प्रचंड, इसलिए कि भक्ति ही जीव का वास्तविक कर्म है, वास्तविक स्वरूप है। जैसे अजामिल ने केवल नारायण नारायण का उच्चारण किया, बच्चे का नाम बोल रहा था नामकरण के समय, तो उसी से उसके सारे पाप नष्ट हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रह गया। भक्ति बहुत प्रबल है, जैसे सूखा ईंधन हो बहुत बड़ा, तो ये जो कर्म है वो सूखे ईंधन की तरह है, और भक्ति एक आग की चिंगारी भी हो तो उसको जलाकर राख कर देगी, बहुत प्रबल। यहाँ तक अनजान में भी हरे कृष्ण निकल रहा है, भगवान का नाम निकल रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की कुछ सेवा किए दिए भगवान को, तो उससे कर्म सब साफ हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है, कृष्ण को प्रणाम करने वाला कभी पुनर्जन्म में जा नहीं सकता। कृष्ण प्रणाम ही न पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म में नहीं जा सकता है। कृष्ण को दान देने वाला, उनकी सेवा करने वाला कभी नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त अप्रक्षति तदहम भक्त प्रहृतम स्नान प्रयतात्मनम शुभा शुभ फलय एवं मोक्ष से कर्म बंध में। वहीं पर बोलते हैं इस तरह से, यदि तुम करते हो, मुझे पत्रम पुष्पम फलम अर्पित करते हो, तो शुभ अशुभ जो भी कर्म बंधन है उसे मुक्त हो जाओगे, स्पष्ट बोल रहे हैं। जी
तो मंदिरों में जो
हाँ
मतलब यहाँ बैठे
जी निश्चित भगवत धाम जाएंगे। हो सकता है कि मतलब कुछ देर से पहुंचे कुछ लोग, लेकिन वो तो चल दिए उस रास्ते पर। हाँ मतलब चल दिए, प्रोसेस चालू हो गया उनका भगवत धाम का। जी हाँ,
लेकिन आने के बाद नहीं आएगा तो फिर से चक्कर में पड़ जाएगा ना?
नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान को एक बार कोई आकर के नमस्कार कर दिया उसका भी चालू हो गया।
आपने कहा कि पुनर्जन्म नहीं होगा।
हाँ,
तो प्रोसेस चालू हुआ तो कहाँ जाएगा?
वो पुनर्जन्म नहीं होगा उसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए दूसरी बार जन्म भी हुआ तो भक्त होगा, भगवान में मति लगी रहेगी, तो उसको पुनर्भव नहीं कहते हैं। अब उसमें 10 जन्म भी लग जाए लेकिन अब जाएगा भगवान के धाम में, तो उसको पुनर्जन्म नहीं कहते, क्योंकि वो जन्म भी लेगा तो भक्ति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भवे भवेश भक्तिमन, हाँ वो भाव है, भवे भवेश भक्तिमन, भाव होगा, जन्म होगा लेकिन भक्तिमान होगा, ये अर्थ है। तो कृष्ण को कुछ भी अर्पित किया गया, कृष्ण को प्रणाम किया गया, कृष्ण का नाम लिया गया, कृष्ण का चिंतन किया गया, केवल तब भी वो व्यक्ति पार हो जाएगा। जमराज के लोक में जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो धीरे धीरे भवसागर से पार हो जाएगा।
तो ये भी बताते हैं, सुना भी है कि जब भक्ति में इतना मन लग जाए तो फिर आना है या जाना है इसकी परवाह ही नहीं रहती।
हाँ,
उसकी चिंता ही छोड़ जाती,
चिंता नहीं रहती। मन जन्म नहीं जन्म नहीं स्वरो भावता भक्ति रहती थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे जन्म मरण से कोई भय नहीं, जन्म हो लेकिन जन्म जन्म में आपकी भक्ति हो। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर भावता भक्ति आहती, यही मेरी इच्छा है। जन्म हो कोई बात नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि शरीर मिलेगा लेकिन अब अन्य जीवों जैसा नहीं मिलेगा, भक्ति करने के लिए शरीर मिलेगा तो वही ठीक है, कोई बात नहीं।
फायदा हो नहीं सकता,
स्मर पर ना देखिए इस विषय में एकादश स्कंध में एक उक्ति है। नव जोगेश्वर गए थे निमि महाराज के यज्ञ में, तो निमि महाराज ने पूछा कि भागवत धर्म क्या है, तो सबसे पहले कबीर जी, कबीर हरि अंतरिक्षा के बुद्ध शिखलाय, कबीर जी उत्तर देते हैं भागवत धर्म क्या है। तो कहते हैं जेवई भगवता प्रोक्ता उपाया यत्न लब्ध है अंज पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता नीता जान आस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कंचित धामन निमिलवा नेत्र न स्खलन न पते दिए। यह मार्ग ऐसा है जिसको भगवान ने अपने मुख से बताया है, और जो वर्णाश्रम धर्म आदि है उसको उन्होंने मनु महाराज आदि के मुख से बतलाया है जगत में, लेकिन भागवत धर्म अपने मुख से बताया है। जान आस्थाय नरो राजन, हे राजन, ये भक्ति मार्ग ऐसा है जिस पर आने के बाद जीव से कभी भूल नहीं हो सकती, कभी प्रमाद नहीं हो सकता, न प्रमाद देते परिचय, मगर विघ्न कभी नहीं आता है। यह पंथ ऐसा है कि इस पर आदमी आंख बंद करके और दौड़ता भी है फिर भी नहीं गिर सकता। ध्यान मिनी लगा नेत्र, तो आंख बंद करना क्या है? आंख बंद करने का मतलब है श्रुति और स्मृति का ज्ञान न होना। श्रुति और स्मृति को आंख कहा गया है, श्रुति स्मृति उभय नेत्र ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको श्रुति में क्या लिखा गया है इसका विज्ञान नहीं है, और स्मृति में क्या लिखा गया इसका विज्ञान नहीं। श्रीमद् भागवतम श्रुति है, और मन में स्मृति आदि स्मृति है, गीता भी एक स्मृति है, तो उसका ज्ञान नहीं है। इस तरह से उसको आंख नहीं है। अच्छा, दौड़ रहा है। अब दौड़ने का मतलब समझते हैं, दौड़ने का मतलब है कि किस जमीन पर पैर को ठीक से ना रखना, जल्दी 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 पैर बढ़ाते जाना। तो कोई भक्ति कर रहा है तो ठीक से नहीं कर रहा है, इसको दौड़ना कहेंगे। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके कुछ पढ़ने लगा, कुछ ये किया, कुछ सेवा किया, कोई ये किया वो किया, कोई खास अच्छा कर भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी न पते न सकले, न तो वो गिरेगा न स्लिप करेगा, ऐसा वो कहता है। गिरने और स्लिप करने क्या मतलब है कि वह स्लिप नहीं करेगा, स्लिप करने वाला है कि आधे रास्ते में नहीं गिरेगा और पहुंच करके भी नहीं गिरेगा। कोई ऊपर चढ़ रहा है चढ़ करके गिर जाए, उसको गिरना कहेंगे, पतन कहेंगे, तो वहां से भी नहीं गिरेगा, बीच रास्ते से भी नहीं गिरेगा। किसी भी तरह से अगर हल्का भी भक्ति कर रहा है, अज्ञान में भी कर रहा है, कृष्ण को जान गया है, कृष्ण हमारे हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे पिता हैं, जान गया है, और भक्ति कर रहा है लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं, फिर भी वो न गिरेगा न स्खलित होगा, तो भगवान को पाएगा ही, ऐसा कहते हैं। और वो राजर्षि के सभा में बोल रहे हैं जहां बहुत बड़े बड़े लोग जुटे थे, उनमें गिरेगा न स्खलित होगा भले आंख बंद करके दौड़े। कोई है जगत में कि आंख बंद करके दौड़े और नहीं गिरेगा और नहीं स्खलित होगा? कहीं गिर सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें दोनों आंख बंद करके चले तब भी न गिरेगा न स्खलित होगा।
तो अभी आपने कहा कि सावधानी की बहुत जरूरत है, ऊपर जाते
हुए आदमी
कभी गिर जाए, पता
नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि अब आंख न खोले, अगर दौड़ना है चलना है तो आंख खोल करके चले तो अच्छा है, जानकारी हो जाए, सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन मेरे कहने का आशय है कि भक्ति एक ऐसा सुरक्षित मार्ग है कि आपके मानसिक भावना की भी अपेक्षा नहीं रखता है। साधन चाहिए, जैसे आप जप कर रहे हैं जप कीजिए, मन कहीं गया हो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, आप पहुंचेंगे। कैसे? जैसे आपने देखा होगा खास करके भारतवर्ष में लोग ट्रेन का आरक्षण कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, बर्थ लेते हैं, रात भर गाड़ी चलती है, दिन भर चलती है, और उस ट्रेन में लोग कोई कोई ताश खेलते हैं, कोई सोते हैं, कोई खाते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ भी करो, चाहे सोया हो चाहे बैठा हो झगड़ा कर रहा हो, लेकिन वो एक रफ्तार से सब जा रहे हैं गंतव्य की ओर, क्योंकि साधन उनका ठीक है, अब समझ रहे साधन पकड़े हैं ऐसा कि जो कि जा रही है, यहाँ तक लोग सोच करके जाते हैं, जब करके देखते नहीं है कि ड्राइवर ठीक चला रहा है कि नहीं। कोई ऐसा नहीं करते रात में चलकर ड्राइवर के पास बैठे भाई ठीक से चलाना, नहीं नहीं सोते हैं, पैसा दे दे करके सोते हैं बर्थ करा के, और एक आदमी उनके गंतव्य की ओर बढ़ा रहा है, उनको ले जा रहा है। हजारों आदमी ट्रेन में सोए, वो किस मूड में है, खा रहे हैं पी रहे हैं जग रहे हैं सो रहे हैं ताश खेल रहे हैं गा रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं। साधन पकड़े हैं तो सब पहुंच जाते हैं, बच्चा भी स्त्री भी कोई भी। ये साधन है भगवान नाम, ये हमारे मानसिक कंडीशन की मेंटल कंडीशन की परवाह नहीं करता है कि हमारा मन कहाँ है। कभी कभी लोग भक्तों को कहा करते हैं ये हरे कृष्ण जपते हो तुम्हारा मन इधर उधर है, जपने में क्या है। तो कोई ऐसा कह सकता ट्रेन में चढ़े हुए आदमी को कि तुम सो रहे हो ड्राइवर को देखो गाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं, अब ये तो पागलपन हुआ ना। वो तो ले जाएगा। साधन जब परफेक्ट है, जब जप हो रहा है भगवान का दर्शन हो रहा है प्रसाद हो रहा है तब तो गाड़ी जाएगी ठीक जा रही है। वो तो हजारों हजारों मनुष्य में कोई इस गाड़ी को पकड़ रहा है, बाकी विरुद्ध जाने वाली गाड़ी पकड़े तो और इतना हरे कृष्ण आंदोलन है सारी दुनिया में, लेकिन फिर भी अन्य पंथ वालों का चल रहा है, लोग इनिशिएशन ले रहे हैं दूसरे से, है कि नहीं, निराकारवादियों से दूसरे गुरु से इनिशिएशन ले रहे हैं, उनको धन दे रहे हैं, उनके प्रचार में है, और हरे कृष्ण महामंत्र जपना छोड़ करके ध्यान कर रहे हैं। तो अब क्या करें, तो मैं जो यह कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मन को छोड़ देना चाहिए, मन नहीं लगाना चाहिए। मैं तो यह कह रहा हूँ कि मन नहीं भी लगा है तो उसका कल्याण होगा, वो परम सिद्धि पाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मन नहीं लगाना चाहिए। आनंद प्राप्त करने के लिए रसानुभूति के लिए तो मन लगाना बहुत आवश्यक है। हाँ मन लगाना चाहिए वास्तव में, लेकिन भक्ति की जहाँ महिमा बताई जाती है, भक्ति इतनी समर्थ वस्तु है कि मन ना भी लगा हो तो ये ले जाएगी, ये कहने के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति नाम की ऐसी महिमा जान गया है तो वह जान बुझ करके अपने मन को इधर उधर रखे तो अपराध कर रहा है। समझ रहे हैं, जब नाम की महिमा जान गया नाम जप की, तो चाहिए कि उसने मन लगाए, भगवान की लीला में मन लगाए, श्रद्धा से जप करे। ये तो बात जो मैं कहा ऐसे लोगों के लिए कहा कि बेचारे जानते ही नहीं है, अज्ञान बस देश कान में आ गए, जप कर रहे हैं भजन कर रहे हैं तो पार होंगे। लेकिन जो महिमा जान गए उनको तो बहुत रस लेकर के मनसो रसेना जप करना चाहिए भजन करना चाहिए, तो बहुत जल्दी सिद्धि पाएंगे। हाँ वो टेम्पररी है, जितना वो किए हैं उतना तो उनका बना हुआ है, अब वो मिटता नहीं है। नेहा भी क्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय में बीत देते, जितना कर चुके हैं उसका नाश नहीं होगा। मान लीजिए कोई 25% किया तो अब चालू जब भी करेगा तो 26 से, भले उसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन जो कुछ कमाया हुआ है वो तो है।
लेकिन जो पाप किया है पहले से किया है चोरी के, जो अंजन ने जानते हुए भी पाप किया है तो भोगना पड़ेगा ना, अभी भक्ति से भी हुई
नहीं, वो उसे नहीं भोगना पड़ेगा। भक्ति थोड़ी भी होती है तो कर्मों के रिएक्शन को बहुत कुछ खत्म कर देती है। ये सामान्य बात नहीं है, कंठी पहनना, तिलक करना, भगवान का नाम लेना, बारंबार प्रणाम करना, भागवत पढ़ना, भक्तों का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, ये सामान्य बात नहीं है, वो बहुत कुछ कर्मों के रिएक्शन को खत्म कर देती है। जैसे भगवान बोले हैं गीता में मैं वैसे बोल रहा हूँ, साफ कहते हैं, और नारद जी भी भागवत में कहते हैं कि भक्ति की हुई कभी नष्ट नहीं होती। नाम जपत मंगल जिसमें, हाँ वही मैं जैसे पहले कहा, भाव चाहे कहीं भाव कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए आप दूध पी रहे हैं और आपके मन में है कि पानी पी रहा हूं, लेकिन दूध तो फायदा देगा ही, चाहे जो जिस भाव से पिए। माताएं होती हैं बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाती हैं, लेकिन वो फायदा करता है। भगवान की कृपा होती है उनके प्रेमी की भक्त की कृपा से। जब भक्त कृपा करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, और भगवान जब कृपा करते हैं तो भक्त कृपा करते हैं। भगवान कृपा करते हैं शुभ कर्म करने से। जैसे कोई सेवा कुछ भगवान की किया, वैष्णवों की सेवा किया, शुभ कर्म किया, दान किया, धर्म किया, इन कर्मों से भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी आया था तुष्यति सर्व जीव, भगवान सभी जीवों पर अनुकंपा करने से खुश हो जाते हैं। खुश होते हैं तो फिर वे अपने भक्त से मिलाते हैं और भक्ति देते हैं। वो लिखा गया है सम्यक व्यवसितो ही सह, व्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय। सम्यक व्यवसितो ही का अर्थ है कि जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो चुका है कि कृष्ण हमारे रक्षक हैं, कृष्ण हमारे सब कुछ हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे प्रियतम हैं, सब हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसको सम्यक व्यवसाय कहते हैं निर्णय। लेकिन ऐसे निर्णय किया हुआ भक्त भी यदि कभी गिरा हुआ दिखाई दे एक्सीडेंटल, तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए, भगवान कहते हैं, उसको अन्य लोगों जैसा पतित नहीं समझ लेना चाहिए। जो अभी भी यदि उसका निर्णय है कि कृष्ण हमारे सब कुछ है, तो मैं उसे चुटकी बजाते बजाते साधु बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्व क्षमति निगच्छति कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त मनुष्य। वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर धर्मात्मा हो जाएगा बहुत जल्दी। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी, लेकिन एक्सीडेंटल फॉलो। उसमें भी कहते हैं भजते मां मना निभा, गिरा है लेकिन मेरा भजन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है अनन्य भाव से, और गिर गया है, गिर करके भी कर रहा है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
जैसे लाल झरना
जी हाँ, जरूर कुछ न कुछ संस्कार उसका पड़ जाता है, हृदय में कुछ न कुछ पड़ जाता है दर्शन का। जत कीर्तनम जत स्मरणम जीक्षण जदिक्षण, इच्छा मैंने दर्शन, भगवान का दर्शन करने से जीव शुद्ध होता है, तो संस्कार बनता है अनजान में है, भले न समझे आदमी लेकिन हृदय में बन जाता है संस्कार, तो बहुत लाभदायक। रथ यात्रा में भगवान को देखना, सवारी देखना, ये सब करना। नट मोहनती महात्मा संसिद्धि प्रमाण करता है। क्या पूछा
आप,
मां माम उपेक्त माम उपेक्त पुनर्जन्म दुखालय न शाश्वत। भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त कर जाता है, मेरी प्राप्ति जिसे हो जाती है, मेरे धन में आ जाता है, तो फिर वह यह दुखालय और अशाश्वत जगत में नहीं आता है।
कब प्राप्ति होती है, कब समझा जाएगी प्राप्ति
भगवान की? भगवान में जब प्रेम हो जाता है तो यही उनकी प्राप्ति है। प्रेम होने के बाद भगवान के धाम में जीव चला जाता है।
भगवान को जब अप्राप्ति मान निवर्तन जब मृत्यु संसार व्रत में, तो जो लोग भगवान को प्राप्त नहीं करते वो ब्रह्म ज्योति में उनकी मुक्ति नहीं मिलती?
नहीं, जो वो तो उस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस बात में श्रद्धा नहीं करते हैं, इस राज विद्या पाल का पालन नहीं कर, भक्ति नहीं करते हैं, वे लोग मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, जन्म मरण नहीं रह जाते हैं। वो ब्रह्म ज्योति में जाने वालों के लिए नहीं कह रहे हैं, सामान्य जीवों के लिए कह रहे हैं।
यदि मानव जन्म इत्यादि जीवा हुआ माना जाता है, फिर मानव जन्म की जरूरत है भगवान प्राप्ति के लिए, तो गाँव पे जन्म जाना भी पड़ता है क्योंकि गाँव में ऊपर जाने का
जी 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 हाँ हाँ। तो उसका कारण है कि जब देवता लोग ये कहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर चाहिए, तो यहाँ पर स्मृतिमत शब्द का प्रयोग किया गया है, भगवत स्मृति से युक्त मनुष्य शरीर की महिमा है, नहीं तो मनुष्य शरीर की कोई महिमा नहीं। जिनमें कृष्ण की स्मृति है, भगवान की भक्ति है, केवल उसी शरीर की महिमा है, नहीं तो बाकी तो कितना शरीर कितने भी धर्मी लोगों को मिला हुआ है, गाय खा रहे हैं, तो उसे क्या होगा, उसे तो पेड़ पौधा का शरीर अच्छा है कि नहीं। नहीं, प्रायः जाते हैं, प्रायः वहां से वो जाते हैं, एडमिशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूर्ण भक्ति नहीं करते हैं, यज्ञ तप आदि किए रहते हैं, तो उनका शेष पूर्ण हो जाता है तो यहाँ गिरते हैं, तो यहाँ गिरते हैं तो प्रायः वे भक्त होते हैं, क्योंकि तो भगवान गीता में कहते हैं सुचीनाम श्रीमतान गे है जो भ्रष्ट भी जाते, एक बार कहते हैं कि जो भ्रष्ट व्यक्ति जाता है ऊपर के लोकों में, वहां का सुख भोगता है, वहां के बाद फिर यहाँ जन्म लेता है, यहाँ जन्म लेकर के फिर भक्ति करता है, ये प्रोसेस है। भगवान कहते हैं कि हाँ एक बार जाता है वहां सुख भोगता है, इसके बाद धनी और पवित्र परिवार में जन्म लेता है और फिर भक्ति करता है, फिर मेरे पास आ जाता है। गोलोक और वैकुंठ दोनों ये कहीं है, जैसे न्यू जर्सी न्यूयॉर्क, कोई बहुत अंतर नहीं है। न्यूयॉर्क वैकुंठ समझिए, न्यू जर्सी गोलोक पेड़ पौधा का है, नहीं तो कृष्ण ही तो वहाँ है ना, कृष्ण ही विष्णु के रूप में है, एक जगह गाय चला रहे हैं, द्विभुज रूप से है, बिना संकोच के उनसे मिला जा सकता है, खेला जा सकता है, दूसरी जगह जरा ऑफिसर टाइप के हैं वैकुंठ में, लेकिन व्यक्ति तो वही है, दो व्यक्ति नहीं है, दो जगह पर दो भाव से रह रहे हैं, लीला भेद है और लेकिन व्यक्ति भेद नहीं है, व्यक्ति वही है जो वहां रह रहे हैं, लेकिन वह एक स्पिरिचुअल स्काई में है, ऐसा नहीं कि उसमें तारतम्य है बहुत छोटा बड़ा, कोई भेद नहीं। टॉप का मतलब यहाँ जैसे टॉप और अधम नहीं है, प्राकृत जगत में जैसे बहुत कंसिडरेशन है, वैसा कंसिडरेशन नहीं है, वैकुंठ में ऊपर नीचे का कोई प्रश्न ही नहीं है, वहाँ टॉप ये है और ये नीचे है, ये शब्द भी नहीं है वहाँ समझ, वहां ये सब भेद नहीं है। और गोलोक वृंदावन वैकुंठ का एक हिस्सा है, सारे अप्राकृत जगत को वैकुंठ कहते हैं, उसी में एक वैकुंठ का नाम है गोलोक, एक का नाम है साकेत, और कई वैकुंठ हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सब वैकुंठ है। हमें कभी भी भगवान के स्वरूपों में व्यक्ति भेद नहीं करना चाहिए, ये कहीं व्यक्ति रूप में खेल रहा है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज है तो कोर्ट में और दूसरे भेष में है, दूसरे भाव में है, वही व्यक्ति में मान लीजिए सामर्थ्य हो और एक ही समय में अपने घर में भी रहे और कोर्ट में भी रहे, ये कहीं व्यक्ति, तो घर में रहेगा तो दूसरी तरह से रहेगा, कोर्ट में रहेगा दूसरे तरह से रहेगा, तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत की रचना के लिए पालन के लिए ईश्वर रूप में विद्यमान है, जिसे विष्णु कहते हैं पुरुषावतार, तो उस रूप में भी वो जगत के हितैषी हैं, सबका पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उस दृष्टि से वे जो भगवान का रूप है वो ज्यादा हम लोगों के निकट है, परमात्मा रूप से हम लोगों के निकट है, हम लोगों का पालन कर रहे हैं, ये तो केवल रास विहार कर रहे हैं, ये तो ध्यान भी नहीं देते हैं है कि नहीं तो उनका वह रूप ज्यादा दयालु है इस विषय में।
तब
जी
तब देवता और कृष्ण के बहुत फर्क है ना?
नहीं, बहुत फर्क है, देवता में और भगवान में बहुत फर्क है।
वो तो उनके स्वरूप के उनको दिया है स्वरूप है।
कौन
देवता जो उनके नियुक्त किए
गए? देवता लोग उनके सेवक हैं, देवता लोग उनके सेवक हैं, और वैकुंठ में जो भगवान है वो कृष्ण स्वयं है। स्वांश विलास कहते हैं जीव को, विभिन्नांश विलास कहते हैं। जय जय, बहुत तेज हो गई। प्रभु नित्यानंद जय जय पदाधर शिव सद्गुरुभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बहुत कम है ना? हम लोगों को तो कुछ समय है, आजकल तो लोग कहते हैं आई हैव नो टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो है टाइम, परंतु इतना समय नहीं है कि पूर्ण व्याख्या की जाए। अतः मैं नाग पत्नियों की स्तुति को अति संक्षेप में पूरा कर रहा हूं। तैतालीस श्लोक चल रहा। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना वादानुरोधाय वाच्य वाचक शक्तये तम तो अहंकारा नावृत इति स्तुवन्ति नमयति। अनंताय, हे अनंत, आपको प्रणाम है। ऊपर के श्लोक में नाग पत्नियां कही हैं कि जितने भी जीव हैं इस प्राकृत जगत में, उन सब की स्वानुभूति गुढ़ हो गई है, छिप गई है, सब अपने को देह मान रहे हैं। इसको त्रिगुणा त्रिगुणेन अभिमानेन कहते। तीन प्रकार का अहंकार होता है, राजस अहंकार, तामस अहंकार और सात्विक अहंकार। प्रत्येक जीव यहां अहंकार में है। अहंकार का अर्थ है अपने स्वरूप से भिन्न देह में जब आत्म भावना करते हैं, आत्म बुद्धि कहते हैं, तो इसको अहंकार कहा जाता है। अहंकार एक नवीन अहं की सृष्टि करना। तो त्रिगुणात्मक यह देह है और इस देह में जीव आत्मबुद्धि करता है, यह मैं हूं, और इस कारण से गूढ़ स्वात्मानुभूत है। जीवों की जो स्वानुभूति है, अपना अनुभव, वो गूढ़ हो जाता, छिप जाता, भगवान की माया का प्रभाव है। लेकिन भगवान स्वयं में अपने आप अपने अनुभव में मग्न रहते हैं, उनका स्वरूप कभी तिरोहित नहीं होता माया के द्वारा, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। अनंत आय परम महते, जिनका ज्ञान बल या सौंदर्य करुणा या जीवन किसी का भी अंत न हो, उसको अनंत कहते हैं। अन्य जीवों के पास जो कुछ भी है उसका एक दिन अंत हो जाता है, जैसे देह का भी, देह का प्रारंभ होता है और एक दिन देह का अंत हो जाता है। धन आदि भी मनुष्य के पास जो होता है या देवताओं के पास भी, एक दिन उसका अंत हो जाता है। स्मृति शक्ति का अंत हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति का अंत हो जाता है, लेकिन भगवान का कुछ भी अंत नहीं होता, नष्ट नहीं होता, इसलिए उनको अनंत कहते हैं। उनके जो भी गुण हैं वो संख्या में भी और क्वालिटी में भी अनंत है। सूक्ष्म आया इस कारण से वे सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ है कि प्राकृत नियम से, प्राकृत स्टैंडर्ड से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। इस जगत में आप देखते हैं कई ऐसी बातें हैं, कैसी वस्तुएं हैं जिनको किसी मीटर पर रखने पर, कंप्यूटर पर रखने पर वो बता देती है हाँ ये ठीक है। जैसे अमेरिका में किसी स्टोर में जाते हैं, दुकान में सामान खरीदते हैं स्टोर से, तो लाला करके कंप्यूटर ही दाम बता देता है इसके, इसे रखने पर लिखा हुआ आ जाता है, कंप्यूटर दाम बता देता है। इसको कहेंगे कि या इसकी कुछ माप है, कुछ स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पर कस लिया जाता है कितने की वस्तु है, क्या वजन है, ये है वो। लेकिन भगवान को किसी भी प्राकृत स्टैंडर्ड से नापा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि लोग भगवान को निराकार कह देते हैं, अलक्ष कह देते, अलग कह देते हैं। उससे पूछा जाता है इंडिया में कि भगवान कैसे, तो कह दो अलग है, उसको कोई लख नहीं सकता। अलग तुम्हारे लिए है कि सबके लिए अलग है? जिनकी दृष्टि भक्ति से श्रेष्ठ हो जाती है उनको तो भगवान दिखाई पड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं, झूला झूलते हैं, गलवाही देकर चलते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, वो चोरी तक करते हैं, भक्तों के घर से माखन चुराते हैं, वस्त्र चुराते हैं, वो निराकार और अलग नहीं है। लेकिन प्राकृत बुद्धि से, प्राकृत माप से भगवान को नहीं समझा जा सकता है, किसी प्राकृत वस्तु से उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। जैसे भगवान के मुख की तुलना करते हैं बदनाम बुझ या चरण के मां देते हैं चरणारविंद, परंतु यह केवल एक पक्षीय वर्णन है। कमल सबसे अधिक सुंदर वस्तु है, इसीलिए उसके उपमा दी जाती है। वास्तव में भगवान का जो चरण है, उनका जो स्वरूप है, वो कमल से अनंत गुना सुंदर है। लेकिन अब करें क्या, इस जगत में कमल के से कोई सुंदर वस्तु नहीं, इसलिए उपमा दे देते हैं, परंतु तो वास्तविक उपमा नहीं है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में लिखा है कि जिस समय भक्त भगवान को डायरेक्ट देखता है, तो उस समय वह भगवान से क्षमा मांगता है, रो रो कर कहता हाय हाय, मैं आपके अंगों की तुलना कमल से कर दिया, चंद्रमा से कर दिया, हमको क्षमा कीजिए, मैं बहुत बड़ा अपराधी। उस समय इस प्रकार भगवान से कहा करता है। तो वास्तव में भगवान सूक्ष्म है, सूक्ष्म का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा, जो समझ में ना आए, जैसे आंखों से दिखाई ना दे, कान से सुनाई ना पड़े, अनुभव में ना आए। तो सूक्ष्म का अर्थ है प्राकृत मापदंड से अतीत, तो समझ में आता है। सूक्ष्म का अर्थ छोटा नहीं हुआ, सूक्ष्म का अर्थ है गुण, समझ में ना आना, अप्राकृत, कूटस्था और निर्विकार है, इसकी व्याख्या हो चुकी थी। अथच विपश्चित है, विचित्र वैदग्धि गुरवे, विपश्चित का अर्थ होता है विद्वान, सब प्रकार की कलाओं के, सब प्रकार की निपुणता के गुरु हैं भगवान। जो कुछ भी संसार में कला है, ज्ञान है, वो उनके द्वारा प्रचारित है, वही सिखाए। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकट लीला में देखा गया है कि कई ऐसे गुण हैं जो किसी से सीखने नहीं गए। जैसे बांसुरी वादन करने के लिए वो किसी म्यूजिक स्कूल में नहीं गए सीखने, बांसुरी उठाया और बजाया तो सबसे अधिक सुंदर बजाया, कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए थे, किसी से सीखे नहीं। जो सारथी का जो काम करने, घोड़ा हाँकने की कला, वो किसी से सीखे नहीं थे, अपने आप में परिपूर्ण है, इसको विपश्चित कहते हैं। सब कुछ का ज्ञान उनको है और पूर्ण ज्ञान है। नाना वादन अनुरोधायती प्रवर्तयती इति तस्मय। इस ये जो वाक्य है नाग पत्नियों का बहुत विचार करने लायक है। इतने इतने वाद क्यों हैं जगत में, भगवान के विषय में भी हजारों कंसेप्शन है। कोई कहते हैं भगवान ऐसे हैं, कोई कहते हैं भगवान ऐसे हैं, कोई कहता है यही भगवान है, कोई कहता है वही भगवान है। कुछ लोग अपने गुरु को ही भगवान कह देते हैं, कुछ लोग कुत्ता को ही भगवान कहते हैं, ऐसा हमने सुना है। एक बदायूं जिला है भारतवर्ष में, जाड़े का दिन था, एक साधु कंबल ओढ़कर सोए थे, जो दूसरा उनका शिष्य उनको पुकारा, उनको जरूरत पड़ गई कि तो पूछा कि गुरु महाराज कुछ काम है आपसे मिलने के लिए, दो आदमी आए हैं, रात का समय था। तो कहा कि नहीं नहीं मैं भगवान के साथ हूँ, मैं इस समय नहीं आऊंगा। भगवान के साथ हैं? हाँ भगवान के साथ हूँ। तो व्याख्या करने के लिए पूछा गया कि भगवान कैसे मिल गए आपको, कहाँ है भगवान? तो वो कहे कि कुत्ते के दो बच्चे जाड़े में ठिठुर रहे थे, उनको ले करके कंबल ओढ़ा करके सोए हैं, कंबल का आवरण डाल करके सोए हैं। अब कुत्तों को भगवान कह रहे हैं, तो बेचारे मर जाएंगे ठंडा से, इसलिए ओढ़ा करके सोए हैं और मिलने नहीं आए। कहे कि हम भगवान की सेवा में, इस तरह से कहे। ये बात छपी हुई। तो ये जो कंसेप्शन है, किसी को भी सत्य मानना, अपना मानना, भगवान के विषय में विचार किया जाता है तो सबका अपना अपना विचार है। खुलम खुला कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। अब जितने अध्यात्मवादी हैं वो अपने समय से सबसे बेस्ट समझे हैं, है कि नहीं? वो यही समझते हैं कि हमारी समझ जो है वो सबसे सबसे फाइन है, सबसे परफेक्ट है, जो कुछ समझे। और इधर की तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे देश में, भारतवर्ष में हजारों से अधिक पंथ होंगे और प्रत्येक आदमी मानता है कि मैं ठीक हूं, परफेक्ट। और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि हरे कृष्ण वाले पागल हैं, ऐसा वो मानते हैं। खास करके ये केस कटा लेने पर सोचते हैं कुछ न कुछ दिमाग में खराबी है, इसलिए ये करते हैं। विशेषकर विदेश में भी ऐसा मानते हैं, लकड़ी की माला पहनते हैं, मिट्टी का पेंट करते हैं, सब पूछा करते हैं इनसे। विदेश में इस तरह की बात ज्यादा पूछते हैं। लेकिन और भी जो भी हैं सब अपने अपने समाज से ठीक मानते हैं। मैं घर में गया था एक बार प्रचार करते हुए, लोग बुलाए थे, मैं बैठा तो लोग भृगु मुनि का चित्र रखे थे। तो मैंने कहा भृगु जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान के भक्त हैं, भगवान की परीक्षा लेने एक बार गए थे। उनका यह सिद्धांत है कि भगवान विष्णु आराध्य है, सबसे महान है, तो फिर भृगु जी को ही सुप्रीम क्यों रखे हैं? तो वो कह ऐसा है कि पहले से ही हमारे परिवार में पूजा होती है। पहले से होती है तो पहले से कौन स्टार्ट किया? भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना। तो नहीं नहीं यही भगवान है। और हम लोग कुछ सुनाना चाहते थे, वो सुने नहीं। कहे कि स्वामी जी आप हमारे घर में आए हैं, प्रसाद पाइए, आप गाइए, हम क्या करते हैं इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, सीधा कह दे हमारे लिए स्टूडियो। किसी किसी घर में जाए तो भगवान दत्तात्रेय इष्टदेव बने हुए, खैर वो तो कुछ हिसाब से हैं भी भगवान। भगवान दत्तात्रेय किसी किसी घर में जाए तो साई ही सबसे बड़ा होता है, साई सबसे बड़ा है। और जो किसी किसी घर में जाए तो कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, कुछ बात है। और कुछ घरों में जाए तो कहेंगे हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन भाई हम ये निराकार मानते हैं। ये सब इतने इतने प्रकार के वाद विचार क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप कारण है। नाग पत्नियां कहती हैं भगवान से, आप कारण है। सबके हृदय में आप बैठे हुए हैं और जो भी कोई विचार देता है तो आपके सैंक्शन के बिना तो दे नहीं सकता। श्री कृष्ण अनुमति देते हैं, ठीक है ये एक मत चालू करो। वो चालू करते हैं। नाना वाद अनुरोधाय, अनुरोध का अर्थ होता है प्रवर्तन, विरोध का अर्थ होता है रोकना और अनुरोध का अर्थ होता है चालू करना। तो नाना वाद जितने भी जगत में परस्पर विरुद्ध वाद भी चलते हैं वो सब भगवान चालू किए हैं। ये कह रही है श्रील प्रभुपाद जी कैसी तुम बोले हैं कि एक बार जब ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में और कहां जर्मनी में कहां युद्ध हो रहा था, तो दोनों पक्ष के सैनिक भगवान से विनय कर रहे थे, हे भगवान हमारी विजय हो जाए, हे भगवान हमारी विजय हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते भगवान तो बड़े फेर में पड़ गए होंगे, अब हम क्या करें, दोनों भक्त हैं किसको विजय दें। और उसमें बोलते हैं कि कभी कभी कोई चोर है, किसी के घर में चोरी करने जाता है, तो वह भगवान से विनय करता है कि हे भगवान